समाधान समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनकम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कुछ मधुमक्खियों पे। उन्हें एक कांच के जार में रख दिया गया और ऊपर से उसे बंद कर दिया गया। अब वो मधुमक्खियां उड़ती थीं, ऊपर की ओर आती थीं और ऊपर का जो ढक्कन था उसे टकरा के वो नीचे आ जाया करते थे। एक मधुमक्खी उड़ी, टकराई, नीचे आ गई, फिर से उड़ी, टकराई, नीचे आ गई, दूसरी मधुमक्खी, तीसरी मधुमक्खी, सबने ये प्रयास किया बाहर आने के लिए। ऊपर आते थे, टकरा के नीचे आ जाते थे, चोट भी उन्हें लगती थी। अब ये प्रक्रिया कुछ समय तक जारी रहा, कुछ दिनों तक जारी रहा। अब सभी मधुमक्खियों ने ये मान लिया कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हम टकराते हैं, हमें चोट लगती है, हम आहत होते हैं, इसीलिए इस ऊंचाई तक हमें उड़ना है, इससे ऊपर हमें नहीं जाना है। उसके बाद वो ऊपर का जो ढक्कन था उसे हटा दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात कि अब वो मधुमक्खियां बाहर तो निकल सकती थीं, लेकिन कोई भी उस दायरे से ऊपर जाता ही नहीं था और सबकी सब वहीं की वहीं बनी रहीं, कोई भी बाहर नहीं निकला, वहीं उनका अंत भी हो गया। मित्रों, कई बार अपने पुराने अनुभवों के आधार पे, पुरानी मान्यताओं के आधार पे हम अपने लिए एक दायरा बना लेते हैं, अपनी सोच का एक दायरा बना लेते हैं, अपने प्रयास का, अपने पुरुषार्थ का एक दायरा बना लेते हैं कि ये मेरी सीमा है, इससे बाहर यदि मैं जाता हूं तो शायद मैं सफल नहीं होऊंगा, या इससे बाहर मैं निकलूंगा तो शायद मैं जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान झेलूंगा या मेरी उन्नति नहीं होगी, आदि आदि इत्यादि। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह सीखना जरूर चाहिए कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। संभव है कि तब परिस्थितियां कुछ और थीं, अब कुछ और हैं, और वही प्रयास, वही पुरुषार्थ, वही अभ्यास आप करते हैं तो आप कहीं आगे निकल जाएंगे। और मुझे लगता है सफल लोग यही करते हैं, अपने दायरों को तोड़ के बाहर निकलते हैं या लगातार प्रयास करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और वही उन्हें बुलंदी तक ले चलता है। क्यों ना हम भी इस एक्सपेरिमेंट से यही सीखें, समझें, दायरे से बाहर निकलना है, कुछ अलग करना है, और अपनी पुरानी मान्यताओं को, भले वो बनी हुई हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, क्यों ना उसमें भी थोड़ा परिवर्तन लाया जाए और विकास की ओर आगे बढ़ाया जाए। विचार जरूर कीजिएगा इस बातें मित्रों, और आइए सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। दाता जी को ओम शांति करते हैं और शुरुआत करते हैं समाधान की। दाता जी ओम शांति। दाता जी, ये जो एक मान्यता है, पीछे के कुछ अनुभव लेके व्यक्ति चल रहा होता है, वैसे तो कहते हैं कि उन अनुभवों से हमें सीखना चाहिए, लेकिन कई बार वो अनुभव, वो मान्यताएं हमारे लिए बाधक नहीं बन जाती विकास में?
बिल्कुल, अनुभव तो हर व्यक्ति लेके चलता ही है
जी,
क्योंकि वो उसने अनुभव प्राप्त किए हैं, इसलिए फिर से वो ध्यान पूर्वक चलता है कि कहीं वैसा फिर से न हो जाए, क्योंकि अनुभव खट्टे, मीठे, कड़वे, लाभकारी, हानिकारी, कष्टदायक सब जीवन में होते हैं। तो मनुष्य उनसे सीख लेता है और कई बार वो अपनी यात्रा को सरल कर लेता है। लेकिन जब हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं विशेष रूप से
जी,
तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये हम नहीं कर पाएंगे। भगवान ने हमें आज्ञा दी है, तो देखिए, एक माँ बाप भी अपने बच्चे को उसकी सामर्थ्य अनुसार ही काम देते हैं ना। एक छोटा बच्चा है 5 साल का, उसे वो 10,000 रुपए दे के ये तो नहीं कहेंगे बाजार से जाओ फलानी बड़ी चीज खरीद लाओ, देखेंगे ना वो कि भाई कौन किसके योग्य है। भगवान ने भी हमें बहुत सारे काम दिए, आदेश दिए, हमें भी ये विश्वास करना चाहिए कि उसने हमें योग्य समझकर ही कार्य दिए हैं। तो हम ये मन बना लें कि जो आदेश उसने हमें दिए हैं उनको करने की क्षमता मेरे पास है, और उसमें लग जाएं तो वो दायरे हमारे टूट जाएंगे। अन्यथा क्या होता है, हर व्यक्ति एक सीमा में बंद कर रहना चाहता है, उसे बाहर वो निकलना नहीं चाहता, उन्हें मान लिया होता है कि इसको हम पार नहीं कर पाएंगे, परंतु जहां दृढ़ता है और कुछ करने की लगन है वहाँ वो दायरा टूटता है और मनुष्य उसको पार कर लेता है। देखिए, मैं मुझे बचपन की एक छोटी सी बात याद आ रही
जी।
गांव में बरसाती नाले होते थे, अब भी होते हैं, लेकिन उन दिनों पुल नहीं होते थे उन पर। तो क्या होता था, अब हम लोग छोटे, हम तो नालों को तैर के पार कर लेते थे, तैरना आता था, लेकिन जो माताएं होती थी जिनके सिर पे गठरी भी होती थी वो क्या करती थी कि वो जो नाला था उसमें एक 4 इंच या 6 इंच का मोटा पाइप लगा रहता था इधर से उधर पानी जाने का ट्यूबवेल का
अच्छा, अच्छा।
वो बड़े मजे से गठरी सिर पे रखे हुए उस पे चल के पार कर लेते थे बड़े आराम से। उन्हें ये आभास ही नहीं होता था कि हम गिर जाएंगे इधर उधर हुए तो क्या हो जाएगा। देखिए कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि भाई इसको पार नहीं किया जा सकता, पुल बनेगा। फिर पुल बना बहुत समय के बाद, तब लोगों की आवाज जावाई ज्यादा रही। लेकिन एक मनुष्य ने मान लिया हमें इधर से निकल जाना है, तो वो बाकी सीमाओं को तोड़ के आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही जीवन के हर फील्ड में मनुष्य को बंध के नहीं रहना चाहिए, मनुष्य को मान लेना चाहिए कि मानव जीवन वही है जिसमें मनुष्य प्रतिपल प्रगतिशील रहे, यानी प्रतिपल वो आगे बढ़ता चले। इसलिए सीमाएं पीछे रह जाएंगी, हम आगे निकल जाएंगे। यही मेंटेलिटी लेकर मनुष्य को जीवन की यात्रा में अग्रसर होना चाहिए।
जी जी, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखने में नहीं आता बता जी कि व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। यहाँ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, इससे मैं बाहर निकलूंगा तो फिर अनकंफर्ट फील करूंगा, मजा नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं क्या क्या होगा मेरे साथ। तो ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है।
बिल्कुल, और जो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए वो महान बन गए, उन्होंने महान कार्य कर लिया। इसलिए जिन युवकों को, पहले मैं युवकों को कहूंगा, जिन युवकों को महान कार्य करना है, जिस फील्ड में भी वो हैं, आगे बढ़ना है, संसार के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना है, उन्हें इस कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, हम लोग भी इधर एसी में बैठे हैं, बहुत लोगों ने अपने घर में कूलर और एसी लगा लिए, लेकिन उन किसानों को, उन मजदूरों को आप देखो जो अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं, सिर पे उन्होंने कुछ कपड़ा बांधा हुआ है और मस्ती से गीत गाते हुए वो काम कर रहे हैं। उन्हें उस गर्मी उर्मी का कोई एहसास नहीं है, उनके लिए ये कोई सीमा नहीं है कि हमें गर्मी रहना है, गर्मी बहुत पड़ रही है। मनुष्य जहाँ कुछ करने की ठान लेता है उसे सीमाएं तोड़ के बाहर जाना ही पड़ता है।
पता जी कई बार लोग भी रोकते हैं इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, कुछ नया करने में, या कुछ एक हट के हम करने वाले हैं तो लोगों की भी बहुत सारी वो रहती हैं, सीमाएं रहती हैं कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम सफल नहीं होगी आदि आदि इत्यादि। मेरे मन में भी एक दुविधा तो रहती है, कोई नई चीजें मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ कि पता नहीं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे बात थोड़ी सी परसेंटेज इसकी ज्यादा रहती है कि तू यहीं रह यार, वहां क्यों जा रहा है, तो यहाँ पे क्या सजेस्ट करेंगे?
देखिए यही मैं यही कह रहा हूँ कि मनुष्य को हमेशा प्रगतिशील रहना चाहिए, मनुष्य को हमेशा नई नई चीजें जानने की, करने की इच्छा रखनी चाहिए अपने अंदर। व्यक्ति वही आगे बढ़ता है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, जो नई नई चीजें करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए कुछ लोग तो ऐसे भाई क्लर्क के रूप में भर्ती हुए थे और क्लर्क से ही रिटायर हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा भाई हाई स्कूल करके आए थे और बस क्या करना, पढ़ के वो जोन पूरा हो गया अपना, आराम से इतना ही तो पैसा हमें चाहिए, दो तीन बच्चे हैं, पत्नी है, सबका गुजारा मजे से चलता है, अब क्या भाग दौड़ करनी है, आराम से जिंदगी जियो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हाई स्कूल करके आए थे और कमिश्नर बन के रिटायर हुए। मेरे पास अपने बहुत लोगों के अनुभव है, बस 2-4 साल में उन्होंने देखा कि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, 12वीं किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर और आगे कुछ कोर्स कर लिए और निरंतर अपने कार्यों में प्रोग्रेस करते रहे
जी।
अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देते रहे, जहां भी मौका मिले वो चूकते नहीं। तो ये जीवन है, इसमें जीवन का आनंद आता है, इससे हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा छोड़ते हैं और हमें भी निरंतर आगे बढ़ने में कई सुंदर अनुभव भी होते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमें सतत बहते रहना चाहिए सरिता की तरह, उन्नति करते रहना चाहिए ताकि दूसरों को भी एक सुंदर प्रेरणा मिले। ठहराव में तो शायद वो पानी में सड़न पैदा होने लगती है और जीवन का आनंद और रस समाप्त हो जाता है। चलिए व्रता जी, इन्हीं प्रगतिशील बातों के साथ मैं आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। पहला मेल हमारे पास आया है व्रता जी, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा, ये कहते हैं मैं बीएससी कर रही हूँ, मेरे घर के सभी लोग विद्यालय से जुड़े हुए हैं और मैं भी सेवा केंद्र पर जाती हूँ, मुरली भी सुनती हूँ, योग भी करती हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत चंचल है, पढ़ने में मन नहीं लगता। और दूसरा इसी प्रकार का मेल ब्रदर जी एक और है, दिल्ली से हमारे पास आया है। ये कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को अच्छा बनाना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ, पर वो बहुत चंचल है, क्या करूँ। एक माँ ने लिखा है कि बिटिया चंचल है, और एक बहन ने ही लिखा है कि मैं बीएससी कर रही हूँ, मन चंचल है।
देखिए, जिसको खुद आभास है कि मन बहुत चंचल है, यूं तो ये स्थिति प्राय सभी के मन की है कि मन इतना चलता है, चंचल माना हो चलता है, इतना चलता है कि उसको रोक पाना उनके बलबूते से बाहर की चीज हो जाती है, और वो इतना तेज दौड़ता है कि कभी कभी मन उसको भय लगने लगता है कि अभी ये कहाँ ले जाके पटकेगा मुझे, जैसा घोड़ा ना इतना तेज दौड़े और लगाम वगाम भी छूट जाए तो मन उसको लगता है अब तो बस मरना ही अंतिम लक्ष्य रह गया है, ये कहीं जाके मुझे गिरा देगा, इधर उधर मार देगा। बहुत अच्छी बात है कि इनको अवेयरनेस है, तो और ये राजयोग का अभ्यास भी करती हैं, ज्ञान मार्ग में भी जाती हैं। कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं इनके सामने रखता हूँ, उनका ये अभ्यास कर लें। इनको 3 मास करना होगा ये सब अभ्यास, और काफी मदद इनको मिल जाएगी। एक तो ये सवेरे उठते ही कुछ सुंदर थॉट किया करें। इनके मन में ये बात जरूर समा गई होगी कि मैं बहुत चंचल हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड ने भी वो स्वीकार कर लिया कि ये तो बहुत चंचल है, तो उसकी चंचलता बढ़ती जाएगी। सवेरे उठते ही मैं बुद्धिमान हूँ, मेरा मन बहुत स्थिर है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, आई एंजॉय माय स्टडी। ये संकल्प एक बार करें, फिर दूसरी बार, विशेष रूप से मैं बुद्धिमान हूँ, मेरा माइंड बहुत स्टेबल है, स्थिर है, सवेरे तो ये प्रैक्टिस करें जी। इसके बाद ये 108 बार बैठकर शांति में लिखे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और जब ये पढ़े कॉलेज में जाए तो हर पीरियड में बिगिनिंग में एक मिनट के लिए अभ्यास कर ले, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, मन को आदेश दे हे मेरे मन शांत, बुद्धि को आदेश दे हे मेरी बुद्धि अब जो लेक्चरर पढ़ाए तू साथ ग्रहण कर लेना। बस इतना सा आधा मिनट का टाइम रोज देंगी
जी,
हर पीरियड में बिगनिंग में, तो बुद्धि की शक्ति बढ़ती जाएगी, उसकी स्थिरता बढ़ती जाएगी, मन शांत। रोज रोज अपने मन को आदेश देने से, जैसे अब सबकॉन्शियस माइंड ने स्वीकार कर लिया है मन बहुत चंचल है, सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेगा मन बहुत स्टेबल है। ये अभ्यास इसे कर लेना होगा
जी।
और जिस माता ने वो कहा कि उसकी लड़की चंचल है, उसको अपनी लड़की के ब्रेन को रोज 10 मिनट एनर्जी देना है, पानी चार्ज करके पिलाना है, और उसको ये बातें सिखा दे कि जब उसको उठाए नींद से तो उसे बुलवाए, बोलो तुम, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं एकाग्र चित्त हूँ, मेरी बुद्धि बहुत स्थिर है, मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, ये उससे बुलवाए। छोटे बच्चे जितने भी हैं वो अगर ये मुख से बोलेंगे तीन बार करा दे, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड इसको ग्रहण करने लगेगा और उसे अनुसार वो काम करेगा, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे।
बिल्कुल प्रति जी, एक बात तो रही पढ़ाई की, लेकिन जहाँ दूसरी बात आ रही है कि बेटी को बहुत अच्छा बनाना चाहती हैं, पढ़ाना भी बहुत अच्छा चाहती हैं, और यहाँ जो चंचलता वाली बात है, कई बार ऐसा लगता है कि कई बार चरित्र की भी बात होती है कि आजकल बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं या मूवीज देख रहे हैं या इंटरनेट में भी बहुत कुछ अवेलेबल है, तो थोड़ी चरित्र वाली यदि चंचलता की बात आती है तो पेरेंट्स खास करके लड़कियों के लिए थोड़े से चिंतित होते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को संभालें, यहाँ क्या सजेस्ट करेंगे?
ये बात यही लोगों के लिए थोड़ी चिंता का विषय बन जाती है कि जो वो लड़कियों को देखते हैं बहुत चंचल है, उसका इफेक्ट उसके चरित्र पर बहुत ज्यादा पड़ सकता है, और मैं जस्ट ओपनली कह दूं कि ऐसी चंचल लड़कियों के लिए बहुत सारे लड़के आकर्षित होंगे, वो उनको इम्प्योरिटी वाइज अट्रैक्ट करेंगी, और इससे उसको बहुत जगह धोखा मिलेगा, इससे उसको बहुत कठिनाइयां हो सकती हैं आगे चलकर। इसलिए माँ विशेष रूप से ये चाहती है उसकी बच्ची चंचल ना हो, वो गंभीर हो, अंतर्मुखी हो, शांत चित वाली हो, तो इस चरित्र का, इस शीलता का प्रभाव भविष्य पर बहुत सुंदर पड़ता है। इसके लिए बच्ची को थोड़ा थोड़ा भी राजयोग सिखाया जाए और जो मैंने सवेरे के संकल्प दिए वो उससे कराया जाए
जी।
और तीसरा संकल्प भी जोड़ दें सवेरे, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं बहुत अंतर्मुखी हूँ, मैं संपूर्ण रूप से शांत हूँ, मेरी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर है। एक बार करके, दोबारा, तीसरा, पांच बार कर ले तो बहुत अच्छा। बच्ची छोटी है तो दिन में भी कराया जा सकता है, क्योंकि बच्चों का मन ज्यादा तेज नहीं दौड़ता है दिन में भी, और सबकॉन्शियस माइंड उनका एक्टिव रहता है, और पढ़ाई में जैसे ही उसका मन लग जाएगा बहुत अच्छी तरह, उसको अच्छा मोटिवेट करे माँ बाप कि तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो जैसे ही पढ़ाई की ओर उसकी रुचि बढ़ेगी तो इधर से उसका मन स्थिर होने लगेगा।
कई पेरेंट्स या कई बहनें माताएं ये कहती हैं ब्रदर जी कि ये हम उनसे बोलने को कहते हैं या करने को कहते हैं तो वो नहीं करते। इस कंडीशन में भी ऐसी संभावना है कि वो ना करें? सारे दिन मान लीजिए वो टेलीविजन ही देख रहे हैं, सारे दिन अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना हो रहा है, या अपनी अपनी शौक है, फैशन के शौक हो सकते हैं, मुझे मोबाइल चाहिए आदि आदि, तो कई बार बच्चे ये चीजें नहीं सुनते, वो चीजें उन्हें ज्यादा चाहिए, तो ऐसे में पेरेंट्स या माँ विशेष कुछ अभ्यास कर ले?
बिल्कुल, माँ को एक तो उसे पवित्र भोजन खिलाना चाहिए, जो हम हमेशा सिखाते हैं, भोजन बनाते हुए सबसे पहले बाबा का आह्वान करें ताकि बाबा के वाइब्रेशंस भोजन में भरने लगें, और फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये याद करते हुए भोजन बनाएं, और अपनी इस बच्ची के लिए आधा घंटा एक टाइम फिक्स करके इसके लिए योग कर दें। सवेरे भी कर सकते हैं जब बच्चे सोए हों, मान लो 5:30 बजे 6 बजे तक आधा घंटा उसको योगदान देंगे और साथ में संकल्प करेंगे
जी।
वही जो उनको करना था ये कर दें, तुम्हारा चित्त स्थिर हो जाए, तुम बहुत चरित्रवान हो जाओ, बस इस संकल्प से वाइब्रेशंस उस रूप में कन्वर्ट होने लगे।
बिल्कुल, मतलब ये योग का अभ्यास करने से ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है जी कि जब बच्चे ऐसे थोड़े से बाहर निकलते हैं और हमें लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है और हम बोलते हैं तो बच्चे और अग्रेसिव हो जाते हैं और घर में खिट-खिट वाली मनमुटाव वाली स्थिति बन जाती है, या तो वो रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाती है, तो शायद योग के माध्यम से इसे ठीक किया जाए।
बिल्कुल, नहीं तो घर में एक विशेष मनमुटाव रहेगा, एक नाराजगी का वातावरण रहेगा, रूसा रूसी होती रहेगी और उससे घर का वातावरण भारी भी हो जाता है, और बच्चे में फिर किस तरफ उसकी रुचि जाएगी ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। मान लो फ्रेंड्स आई थी उसको लेने के लिए और माँ बाप ने कहा बिल्कुल नहीं जाना है
जी,
अभी फ्रेंड चली गई और ये मूड ऑफ करके घर में बैठी है, अब ये क्या रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है, ये अगला इसका स्टेप होगा। अगर उसको सद्विवेक प्राप्त हुआ तो वो अच्छा मार्ग अपना सकती है, और सद्विवेक प्राप्त नहीं हुआ तो वो ऐसा कर सकती है, वो मैं बताऊंगा नहीं, नहीं तो किसी सीख जाएंगे, मतलब कुछ चीटिंग जैसा कर सकती है अपने माँ बाप को
जी, जी।
और वो फिर टोटल उसके फ्यूचर के लिए
अच्छा नहीं होता। बिल्कुल, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देना, आध्यात्मिक वाइब्रेशन अभ्यास जो आप बताते हैं वही एक सुंदर सा और श्रेष्ठ रास्ता है ताकि उन्हें हम सद्विवेक दे पाए। प्रत्येक अनुराधा जी का अगला हमारे पास मेल आया है, ये कहती है कि हमारे लौकिक दोस्त बहुत स्वस्थ हैं, वो हमें बोलते हैं कि तुम प्याज नॉन वेज नहीं खाते इसलिए ऐसे हो, मतलब शायद पतले दुबले होंगे ये, पर बाबा की भोग में तो बहुत शक्ति होती है, मुझे पता है मैं अपने दोस्तों की तरह दूध फ्रूट नहीं खरीद सकती, पर बाबा की तो एक सूखी रोटी भी बहुत है। भाई जी मैं हमेशा भोग लगाकर भोजन करती हूँ पर फिर भी हम दोनों बहुत ही कमजोर और चेहरे पे चमक भी हमारी नहीं है, आप बताएं मैं कैसे भोग लगाऊं, कैसे योग करूं, मैं पूरे दिन की जॉब करती हूँ तो मैं शाम को जब आती हूँ तो फिर बहुत थकी हारी भी रहती हूँ, और लोगों की जब ये बातें सुनते हैं तो कई बार मन थोड़ा सा उदास सा हो जाता है, क्या विशेष किया जाए?
देखिए पहले तो मैं इन्हें कहूंगा दोस्तों की ये बात सुन के कि हम लहसुन प्याज खाते हैं, हम नॉन वेज खाते हैं, हम हेल्दी हैं, इन्हें भी खाना शुरू नहीं कर देना चाहिए। सबकी हेल्थ बचपन से अपनी अपनी होती है, अब कोई बच्चे पैदा ही ऐसे हुए वो दुबले पतले हैं, फिर किसी का जीवन ऐसा रहा कि बचपन से ही संघर्ष भोजन भी अच्छा नहीं मिला, साधारण घर में थे, पढ़ाई का भी दबाव रहा, तो टोटल पतले दुबले रह गए। तो इनको इस बात पे अब ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो खाएंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं रोज अंडे खाते हैं और अनेक बीमारियों के शिकार हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो लहसुन प्याज खाते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि सबसे अच्छी मेडिसिन है, तो भी लोग गैस ट्रबल और पेट के रोगों के शिकार हैं। रोगों में बहुत सारे पहलू हैं, पूर्व जन्मों के मनुष्य के विकर्म इसके लिए इम्पोर्टेंट पहलू हैं। कैसा पोषण दिया गया है बचपन से मनुष्य को, कैसे हवा पानी में उसकी पालना हुई है, क्या उसने खाया है बचपन से, इन सब चीजों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मान लो किसी का डाइजेशन बचपन से ही खराब रहा हो, कुछ भी खिला लो उसको, दूध में डुबोए रखो वो तो वैसे ही रहेंगे, अंडे खिला दो चाहे बकरे खिला दो वो तो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उनको हजम होगा नहीं कुछ भी। इसलिए अब इनको चाहिए, बाबा को भोग लगाती हैं ये, पानी में बहुत पावर है, पानी को चार्ज करके पिए और ये संकल्प बिल्कुल मन से निकाल दे कि हम बहुत कमजोर हैं। ये संकल्प ही इनके लिए सबसे बुरी चीज हो रही है, हम तो दोनों बचपन से ही बहुत वीक हैं और हम तो ऑफिस से आते हैं तो हारे थके होते हैं, ऑफिस से आए 5-7 मिनट मेडिटेशन करें, अपने को एनर्जेटिक करें, मैं बहुत हेल्दी हूँ, स्वयं भगवान मेरे साथ है, अब मैं घर का काम करूंगी, बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ रहेगा, मेरे काम फटाफट हो जाएंगे, ये अपने कार्यों को एंजॉय करने लगे, अपनी मेंटेलिटी को चेंज करे तो इसको थकान होगी नहीं और हेल्थ भी अच्छी होती जाएगी। यही है भोजन पवित्र, भोजन योगयुक्त होकर बनाए, बाबा को भोग लगाए, दृष्टि देकर अच्छा अभ्यास करके, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये भोजन खाने से मुझे बहुत एनर्जी प्राप्त होगी, इस तरह भोजन खाएं, नींद भी अच्छी करें, इनकी हेल्थ इम्प्रूव होती जाएगी।
बिल्कुल, मतलब उनकी बातों पे ध्यान न दिया जाए। पता जी, भोग लगाने की विधि ये पूछ रहे हैं कि क्या कुछ विशेष प्रकार से, वैसे लगाती तो हैं ये, फिर भी पूछ रहे हैं कि कैसे मैं लगाऊं ताकि उसमें और ज्यादा शक्ति और बल भर जाए।
देखिए, भोग लगाने का सीधा सा अर्थ ये होता है, भगवान तो कुछ खाता नहीं है, वो तो अभोक्ता है, हम उसे जस्ट भेंट करते हैं, हम उसे अपना भोजन अर्पित करते हैं। तो भोजन बनाए, उसमें से छोटी अलग डब्बियां रखें, कोई लोग चांदी की रखते हैं, स्टील की रखें, अलग बिल्कुल साफ सुथरी, उनमें थोड़ा थोड़ा भोजन डालें, डाल के पानी रखें, फ्रूट भी रख सकते हैं, फूल भी रख सकते हैं, और बाबा के सामने, बाबा का कक्ष बना हो या कहीं भी इन्होंने स्थान बनाया हो,
पूजा कर
उसके सामने रख दें
जी,
और योग में बैठे मेडिटेशन करें और बाबा को बात करें, बाबा आपके इस पवित्र यज्ञ का, उनका घर भी यज्ञ ही है, ये ब्रह्मा भोजन मैं आपके लिए लाई हूँ, मैंने बहुत प्यार से बनाया है, आप इसे स्वीकार करो, इसमें इतना बल भर दो कि खाते ही हम पूरे हेल्दी हो जाएं, शरीर के सारे रोग शोक नष्ट हो जाएं, हमारे घर में आनंद का वातावरण छा जाए, और फिर देखो बाबा भोजन पर दृष्टि डाल रहा है और स्वीकार उसने कर लिया है। बस इतना करेंगे तो जाएगा हमारा प्यार, हमारी भावनाएं, हमारी समर्पणता, ये एक्चुअली भोग के पीछे लक्ष्य है।
बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद फिर हम उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, हेल्दी भी होते चलेंगे। चलिए ब्रता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराधा जी को उनका उत्तर मिल गया होगा, अब उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, शुद्ध भोजन में जो बल है वह शुद्ध भोजन में तो कतई है ही नहीं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच परमात्मा को अर्पित करके कोई भी चीज स्वीकार की जाए, और ब्रता जी लगातार कहते हैं चाहे पानी आप स्वीकार कर रहे हैं, भोजन स्वीकार कर रहे हैं, उससे पहले उसे स्वीकार कराएं जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसने सचमुच वो भोज्य पदार्थ भी हमें प्रदान किए हैं, तो वो भी प्रसाद का रूप ले लेता है, शक्ति बन जाता है, हमारे शरीर को भी शक्ति प्रदान करता है, आत्मा को भी शक्ति प्रदान करता है। और जहां से मैंने शुरुआत की थी मित्रों, बहुत ही गहन बात है, उस पर विचार जरूर कीजिएगा, हमने अपने लिए दायरे न बना लिए हों, उससे बाहर निकल के कुछ करने की आवश्यकता है ताकि जीवन निरंतर आगे बढ़े और हम भी जीवन का संपूर्ण रूप से सुख और आनंद ले सकें। क्योंकि कुछ नया करने में जो आनंद है वो उसी दायरे में रहने में कई बार लगता है कि नहीं है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास क्षमता है, योग्यता है, लेकिन वही अपने पुराने अनुभव के कारण हम शायद उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं और जो हमें अचीव करना चाहिए, जहां हमें पहुंचना चाहिए, वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाथी को महावत एक पतली सी रस्सी से बांध के रखता है। हाथी चाहे तो बड़े से बड़े मोटी रस्सी को तोड़ सकता है, एक पतली रस्सी से भी बांध के महावत उसे चला जाता है और हाथी उससे बंधा रहता है। ऐसा इसलिए होता है मित्रों, क्योंकि वो जब हाथी छोटा होता है तो उसे बहुत मोटी सी रस्सी या फिर संकल से बांधता है महावत। वो छोटा हाथी बार बार उसे तोड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन महीनों तक जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो फिर वो प्रयास करना छोड़ देता है। फिर महावत समझ जाता है कि अब इसने प्रयास करना छोड़ दिया, तो एक पतली सी रस्सी से उस हाथी को बांध देता है। हाथी यदि थोड़ा सा और प्रयास करता, एक बार प्रयास करता, तो वो छूट के जंगल में स्वतंत्र हो सकता था, लेकिन वो प्रयास नहीं करता अपने पुराने विचारों के कारण, पुराने अनुभवों के कारण। कहीं हम भी उस हाथी की तरह अपने आप को ऐसा तो महसूस नहीं कर रहे हैं कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकता। सफलता का एक सुंदर सा सूत्र किसी ने बताया मित्रों, एक बार और, बस एक बार और। यदि हम एक बार और प्रयास कर लेते हैं ना, तो शायद आज जहां हम हैं उससे कहीं आगे होंगे, कहीं ऊपर होंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप और ऊपर बढ़ें, जीवन को संपूर्ण रूप से जिएं, संपूर्ण आनंद प्राप्त करें। कल पुनः मुलाकात होगी मित्रों, इस सुंदर विषय पे आगे भी ब्रता जी के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरणी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान।